नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा।
देश अब अपनी श्रम शक्ति पर।
मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने हरित, स्वच्छ और भविष्य की दिल्ली बनाने की दिशा में 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में ग्रैब 4 को हटाने के बाद भी नो PUCC नो फ्यूअल अभियान जारी रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 के लिए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान किए। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने छात्रों को समस्या समाधान कौशल से लैस करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में AI को पाठ्यक्रम में शामिल करने का आह्वान किया। और घने कोहरे के कारण दिल्ली NCR क्षेत्र में हवाई और रेल सेवाएं बाधित। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में हरित, स्वच्छ और भविष्य के लिए तैयार दिल्ली की दिशा में 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले वर्ष की 1 अप्रैल से राजधानी की सभी बस सेवाएं पूरी तरह से दिल्ली परिवहन निगम द्वारा संचालित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इससे बस संचालन अधिक प्रभावी होगा, सेवाएं समयबद्ध बनेंगी और यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और अधिक सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलेगी। वहीं दिल्ली सचिवालय में हुई इस बैठक में दिल्ली के जलाशयों और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का निर्णय भी लिया गया। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इससे भूजल स्तर में सुधार होगा, जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा और स्वच्छ जल स्रोतों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि बैठक में होलंबी कलां में ई वेस्ट इको पार्क स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि ये पहल इलेक्ट्रॉनिक कचरे के वैज्ञानिक और सुरक्षित निपटान को सुनिश्चित करेगी और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती देगी। राजधानी में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज बताया कि दिल्ली में ग्रैब 4 हटने के बाद भी नो PUCC नो फ्यूअल अभियान जारी रहेगा। इस अभियान के अंतर्गत बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ईंधन न देकर वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करना है। नई दिल्ली स्थित दिल्ली सचिवालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान श्री सिरसा ने बताया कि दिल्ली की हर गाड़ी के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी माध्यम ये प्रमाण पत्र ही है। कुछ PUCC केंद्रों के तय मानकों के अनुसार कार्य न करने की शिकायतों पर पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस पर तत्काल निरीक्षण करते हुए मानकों में लापरवाही बरतने वाले 12 केंद्रों को निलंबित कर दिया है और अब उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बाकी सभी केंद्रों की भी जांच होगी और जो भी नियमों का पालन करने में विफल रहते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता आज केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल से मिले। इस अवसर पर उन्होंने श्री लाल को दिल्ली विधानसभा की प्रस्तुति दी, जिसमें शताब्दी यात्रा वीर विट्ठल भाई पटेल शीर्षक से प्रकाशित कॉफी टेबल बुक भेंट की। इस अवसर पर श्री लाल ने बताया कि दिल्ली में करीब 72,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं प्रगति पर हैं और कई नई योजनाएं तैयार की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मेट्रो के परिचालन से पानीपत से करनाल तक संयोजकता मजबूत होगी, जबकि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के विस्तार के लिए भी कई पहल की जा रही हैं। इस अवसर पर श्री विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में लागू ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, सौर ऊर्जा आधारित हरित विधायिका और विधानसभा को हेरिटेज साइट के रूप में विकसित करने के प्रयासों की जानकारी दी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि आज के समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होनी चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित AI विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि AI से प्रारंभिक परिचय छात्रों को आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल से लैस करेगा।
उपराष्ट्रपति ने रेखांकित किया कि भारत सर्वांगीण विकास और राष्ट्रीय परिवर्तन के लिए AI से संबंधित नीतियों और परियोजनाओं को आकार देने में वैश्विक स्तर पर सबसे सक्रिय देशों में से एक बनकर उभरा है।
The world is changing so fast, so we have to run along with it. If we are not having that outlook that we have to change ourselves, then we will be left out. Artificial intelligence, वी आर ऑक्युपाइंग द थर्ड रैंक इन द वर्ल्ड दैट इज अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट।
इस अवसर पर राज्य के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि एआई पहले से ही सीखने सिखाने मूल्यांकन करने शासन करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में बदलाव ला रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एआई का उद्देश्य शिक्षा के मानवीय उद्देश्य को पुनर्स्थापित करना है। श्री सूद ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षकों को छात्रों को पढ़ाते समय एआई के महत्व और इस्तेमाल के तरीके के बारे में बताना चाहिए। प्रादेशिक समाचार के लिए नितिका गुप्ता।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 प्रदान किए। ये विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान है। ये पुरस्कार विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम सहित चार श्रेणियों के अंतर्गत दिए गए। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के दूसरे संस्करण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म विभूषण प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रोफेसर नार्लिकर प्रख्यात भारतीय खगोल भौतिक विज्ञानी और ब्रह्मांड विज्ञानी थे। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण और पदार्थ सृजन को एकीकृत करने वाला प्रसिद्ध होयल नार्लिकर सिद्धांत विकसित किया था। डॉक्टर यूसुफ मोहम्मद शेख, जयन एन, प्रोफेसर एम महाराज समेत 8 वैज्ञानिकों को विज्ञान श्री पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके साथ ही इसरो के अंकुर गर्ग, IIT के अमित कुमार अग्रवाल, बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के प्रोफेसर अरका प्रभा बसु को विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर श्रेणी में पुरस्कृत किया गया। वहीं विज्ञान टीम पुरस्कार टीम अरोमा मिशन CSIR को प्रदान किया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों के व्यापक क्षेत्र में व्यक्तिगत या टीम के रूप में कार्यरत वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकी विदो और नवोन्मेषकों के उत्कृष्ट एवं प्रेरणादायी योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने AILA यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट नामक एक AI प्रणाली विकसित की है। ये प्रणाली एक वैज्ञानिक की तरह वास्तविक वैज्ञानिक प्रयोग करने में सक्षम है। इसका चैट इंटरफेस सरल है जिसमें निर्देश अंग्रेजी में दिए जाते हैं और एजेंट उन्हें कोड में परिवर्तित करके प्रयोग का काम करती है। प्रोफेसर अनूप कृष्ण ने बताया कि ये तकनीक भारत के वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांति ला सकती है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लेबोरेटरी असिस्टेंट इज अ एजेंटिक सिस्टम जस्ट लाइक वी हैव लैंग्वेज मॉडल्स लाइक ChatGPT। जब आप उसमें टाइप करते हैं आपको जवाब ऐसे ही मिल जाते हैं। सो नाउ इट्स नॉट जस्ट इंटरनेट सर्च और इट्स नॉट जस्ट गेटिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम लैंग्वेज मॉडल। इट कैन परफॉर्म रियल वर्ल्ड एंड इट कैन परफॉर्म रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट्स लाइक द वंस दैट वी आर डेमोन्स्ट्रेटिंग हियर। सो इट हैज़ अ AI एजेंटिक फ्रेमवर्क वेयर यू गिव सिंपल इंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड इट विल कन्वर्ट इट टू अ कोड एंड देन परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स एंड गिव यू द आउटपुट ऑफ द एक्सपेरिमेंट।
दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्रराज सिंह ने आज दिल्ली सचिवालय में समाज कल्याण योजनाओं से संबंधित वर्ष 2025-26 की संशोधित बजट समीक्षा की। श्री सिंह ने जनसुनवाई के दौरान राष्ट्रीय राजधानी के लोगों से सीधा संवाद भी किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और उनकी परेशानियों के निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों और दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या किए जाने के विरोध में कई संगठनों ने आज नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उच्चायोग के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और क्षेत्र में 3 स्तरीय नाकेबंदी की गई है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। दिल्ली की एक अदालत ने आज कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ED द्वारा दायर मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। ये मामला गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में वर्ष 2008 के एक भूमि सौदे से जुड़े कथित धन शोधन मामले से संबंधित है। राउज एवेन्यू कोर्ट अब धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA के अंतर्गत चार्जशीट पर ईडी की याचिका पर 22 जनवरी 2026 को सुनवाई करेगा। ईडी ने वाड्रा पर हरियाणा में 3.53 एकड़ जमीन के धोखाधड़ी वाले भूमि सौदे के माध्यम से अपराध की आय अर्जित करने का आरोप लगाया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने आज मादक पदार्थों की बरामदगी के मामले में वांछित एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में कुल 1,289 किलोग्राम कोकेन और मेफेड्रोन तथा 39.706 किलोग्राम थाई मारिजुआना बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी, जो थाईलैंड से आयातित मारिजुआना का प्रमुख आपूर्तिकर्ता था और मामले का पता चलने के बाद से फरार था। दिल्ली पूर्व जिले के साइबर पुलिस थाने ने आज विद्या बाल भवन न्यू अशोक नगर में छात्रों के लिए एक साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस सत्र में छात्रों को साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन धोखाधड़ी, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग और डिजिटल जगत में व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के महत्व के बारे में बताया गया। वहीं छात्रों को साइबर खतरों की पहचान करने और साइबर अपराध की रिपोर्ट तुरंत करने को कहा गया। आज दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में घने कोहरे के कारण कई रेल और उड़ानें बाधित हुईं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने बताया कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कम दृश्यता के कारण लगभग 10 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। भारतीय रेलवे के दिल्ली प्रभाग ने बताया कि 50 से अधिक ट्रेनें 6 घंटे तक विलंबित हैं। राजधानी में दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर नई सतत ऊर्जा नीति का अनावरण किया। DMRC ने बताया कि इस नीति का उद्देश्य ऊर्जा प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं को संस्थागत रूप देना है और DMRC कर्मचारियों के बीच स्थिरता की संस्कृति को बढ़ावा देना भी है। DMRC के प्रबंध निदेशक ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त मेट्रो स्टेशनों टीमों कर्मचारियों को ऊर्जा बचत और सौर ऊर्जा उत्पादन में सुधार के लिए सम्मानित किया। दिल्ली पुलिस की विशेष टीम ने आज एक आरोपी को मोबाइल चोरी के मामले में गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 4 मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस के अनुसार आरोपी का अन्य आपराधिक मामलों में भी संलिप्तता दर्ज है। मामले में आगे की जांच जारी है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली के भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में 15वीं पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अदालत में 24 विभागों और मंत्रालयों से संबंधित कुल 1087 लंबित पेंशन शिकायतों का निवारण किया जाएगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग ने बताया कि इसका उद्देश्य पेंशन भोगियों की लंबित शिकायतों का समाधान करना है। इनमें पारिवारिक पेंशन शुरू होने में देरी के कारण बकाया राशि से जुड़े मामले भी शामिल हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर राजधानी में प्रदूषण के लिए उनकी आलोचना की। श्री सक्सेना ने 15 पन्ने का पत्र लिखकर उनकी सरकार पर 11 वर्षों की उपेक्षा और आपराधिक निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए राज्य के वायु प्रदूषण की स्थिति को लेकर जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए वर्तमान भाजपा की दिल्ली सरकार के समक्ष अनावश्यक रूप से जटिलताएं पैदा कर रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने हरित, स्वच्छ और भविष्य की दिल्ली बनाने की दिशा में 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, दिल्ली में ग्रैप 4 को हटाने के बाद भी नो PUCC नो फ्यूअल अभियान जारी रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 के लिए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान किए। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने छात्रों को समस्या समाधान कौशल से लैस करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में AI को पाठ्यक्रम में शामिल करने का आह्वान किया। और घने कोहरे के कारण दिल्ली NCR क्षेत्र में हवाई और रेल सेवाएं बाधित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।